ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஓம் லம்போதரம் பரமசுந்தரமேகதந்தம் ரக்பாம்பரம் த்ரிநயனம் பரமம் பவித்ரம் உத்யாப்திவாக்கரம் கரோஜ்வலகாய காந்தம் விக்னேஸ்வரம் சகல விக்னஹரம் நமாமி. சச்சிதானந்த ரூபாய விஸ்வோத்பத்யாதி ஹேதவே தாபக்ரய விநாசாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நமஹ. ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஸ்ரீகிருஷ்ண ஹே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசு ஏவ ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஸ்ரீகிருஷ்ண ஹே முராரே, ஹே நாத நாராயண ஏவ ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஹே நாராயண வாசுதேவ ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஹே நாத நாராயண தேவ ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஸ்ரீகிருஷ்ண ஹே நாத ஏவ ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஸ்ரீ ஹே முராரே, ஹே நாத நாராயண ஏவ ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஹே நாத ஏவ ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஹே நாத நாராயண வாசு ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ ஸ்ரீகிருஷ்ண ஹரே முராரே நாராயண ஏவ ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री हरे मुरारे हे नाथ नारायण हेव बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज आप लोग इस प्रेमपुरी आध्यात्म भवन में मेरी एक दिन की सेवा है, इस सेवा को मैं करने के लिए बैठा हूं। आप लोगों के सामने एक जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी का एक सुंदर छोटा सा ग्रंथ है, उसका नाम प्रश्नोत्तरी है और दूसरा उसका नाम है मणिरत्न माला। कोई मणिरत्न माला बोलते हैं, कोई प्रश्नोत्तरी बोलते हैं। उनमें अनेक प्रश्न हैं, तो जितने प्रश्न हैं वे सब एक एक मणि के तरह है, अनमोल है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम मणिरत्न माला भी बोलते हैं। 31 श्लोक है, बहुत छोटा सा, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार प्रवचन भी उसके ऊपर सुना होगा। उसके प्रारंभिक में प्रश्न भी है और मंगलाचरण भी है। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण जरूर होता है। मंगलाचरण का अर्थ है अपने द्वारा आरंभ किया हुआ जो कार्य हो चाहे ग्रंथ हो, उस कार्य में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। श्रेयांसि बहूनि विघ्नानि, जो अच्छे काम होते हैं उन्हीं में अनेक विघ्न आते हैं। आप खराब कर्म करने के लिए जाएंगे तो कोई आपको बाधा नहीं आएगी, सब संगे साथ हो जाएंगे, और अच्छे काम करने के लिए कोई साथ देते नहीं है, अनेक विघ्न भी प्रतिबंधक आ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं श्रेयांसि बहूनि विघ्नानि, और एक मराठी में हम लोग बचपन में सुनते थे, नकटीचा लगनाला 17 विघ्न, एक नहीं बोलते अनेक विघ्न आ जाते। लेकिन वहां तो एक अलग बोल दिया, यहां तो श्रेयांसि बोल दिया, मुझे अच्छे काम के लिए, और वो भी एक अच्छा ही काम है। तो इसी प्रकार आरंभ किया हुआ जो कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए उसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक मंगल, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश, नमस्कार, आशीर्वाद। बड़े लोगों को हम प्रणाम करते हैं, तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं महाभारत कितना सुंदर, हमेशा पांडवों की वृत्ति कैसी रही, नतमस्तक होने, बड़ों के सामने हमेशा नतमस्तक। फिर बड़े लोग जी भर के क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और ये आशीर्वाद एक कवच का काम करता है। इसलिए ये मंगलाचरण आशीर्वादात्मक भी होता है, भगवान का आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना। वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण होता है। वस्तु निर्देशात्मक, किसी कुमार संभव में कालिदास जी ने बहुत सुंदर, अस्ति उत्तर श्याम हिमालयो नगादि राजा, हिमालय का एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हैं। और हम लोग देखते हैं सभी जितने भी मंगलाचरण होते हैं नमस्कारात्मक होते हैं, जितने भी मंगलाचरण हम लोग करते हैं वे नमस्कारात्मक ही होते हैं। तो यहां प्रश्नोत्तरी का जो पहला ग्रंथ है ये मंगलाचरण भी है और प्रश्न के रूप में भी प्रारंभ करते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी के अनेक शिष्य बैठे हुए सामने और आचार्य जी को प्रश्न करते हैं और वे उत्तर देते हैं। पहला श्लोक है, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वद एतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। शिष्य लोग ही बोलते हैं, गुरुदेव ये संसार कैसा है, अपार विशेषण देते एक 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 अपार विशेष, जिसका कभी भी पार नहीं हो सकता है, असंभव नहीं लेकिन दुस्साध्य। रोग तीन प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा बुखार आया कुछ हुआ तो थोड़ी सी दवाई दे दी तो रोग तुरंत ठीक हो जाता है। आजकल टीबी, दमा, ये भी जो है थोड़ी सी अच्छी दवाई लिया जाए, नियम से दवाई ले, परहेज का पालन करे तो ये भी दुस्साध्य है। मैं थोड़ा कष्ट से, कष्ट सहन करने से, मतलब दोनों से परहेज आजकल महत्व होता है। तो ये दुस्साध्य बीमारी है, टीवी आदि दमा एक बार लग जाए तो जल्दी जाता नहीं, लेकिन दुखेन मैंने अपना परहेज दवाई आदि ज्यादा दिन सेवन करने से ये भी जाते। और आजकल का जो कैंसर है, पहले स्टेप चला गया, दूसरे स्टेप में चला गया तो फिर वो कैसा है, असाध्य हो गया, फिर उसको साध्य नहीं है। साध्य, दुस्साध्य, असाध्य, मन तीन प्रकार के जिसे रोग होते। इसी प्रकार ये संसार से पार जाना दुस्साध्य, असाध्य तो नहीं, असंभव तो नहीं, लेकिन कैसा है, दुस्साध्य है। इसलिए यहां पर अपार मने पार ही जाया जाता नहीं, ऐसा नहीं, मैंने दुस्साध्य है, इतना प्रयत्न कोई कर लेता है तो पार हो सकता है। तो ये समुद्र की उपमा दे दी, समुद्र हमें दिखाई दे रहा है सामने, इस समुद्र की उपमा किसको दे दी, संसार को दे दी। ये संसार कैसा है, ये अपार समुद्र के तरह है। उपमा संसार की, संसार उपमे और समुद्र उपमा, बोले उपमा और उपमेय, समुद्र की उपमा दे रहे हैं संसार को, संसार उपमेय है। तो पहला उदाहरण देखा जाए, जिसकी उपमा दी जा रही है वो हम उसको पार कर सकते हैं या नहीं है। पृथ्वी में देखा जाए तो 75% जल है और थोड़ी सी पृथ्वी है, तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी जहाज हो, कोई भी हो, इस समुद्र को कोई पार करता नहीं है। तो किसको पार करता है, बीच में टापू है, एक टापू से दूसरे टापू, जैसे यहां पर एलिफेंटा बीच में है, तुरंत जा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे भी, जैसे हमारे लिए एलिफेंटा नजदीक है तो दूसरे देश पानी से भी जाने पर थोड़े दूर है, लेकिन समुद्र को हम पार नहीं करते हैं बल्कि एक छोटे छोटे टापू को, जिसको बेट बोलते, तो उसको ही पार करते हैं, समुद्र को पार नहीं करते। किंतु ये संसार को हम, संसार से तो पार होना है और यहां समुद्र से अपार केवल बोल दिया, तो इसका वास्तविक देखा जाए तो अपार संसार से होता नहीं है, क्योंकि संसार के भी, जो समुद्र के भीतर ही टापू है, इसलिए समुद्र से तो पार होने का सवाल ही होता नहीं है। क्यों कि समुद्र के भीतर ही सब जितने भी देश है, लेकिन संसार से पार जाना है, मैंने उपमा और उपमेय के लिए मैंने थोड़ा सा ये बोला कि संसार और समुद्र में क्या अंतर है। समुद्र विशाल है, समुद्र के भीतर ही सब टापू है, तो समुद्र का तो पूर्ण रूप से पार तो कर नहीं सकते हैं, कहीं भी जाए तो पानी पानी रहेगा। तो एक मैंने ये बोला कि उसका पार इसलिए नहीं हो सकते हैं कि कहीं भी जाना है तो हमें एक टापू को ही लगना पड़ता है, और यहां संसार में तो कोई टापू जितने टापू हो इसमें ही रहने से हमें क्या आपत्ति है। समुद्र का तो पार करना ही नहीं, समुद्र में एक टापू से दूसरा टापू जाया जाता है, लेकिन यहां इस संसार में तो एक टापू से दूसरा टापू मने क्या है, योनि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जटरे शयनम, ये अनेक टापू को लेकर ही जाएगा, इसके पार भी नहीं हो सकता। तो इससे पार करने का कोई प्रयोजन है क्या, तो इसी में रहने में क्या आपत्ति है, इसी में रहने में तो आपत्ति तो कुछ भी नहीं है, भक्त लोगों के लिए आपत्ति नहीं है, ज्ञानी लोगों के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन अज्ञानी लोगों को जरूर दुख होता है। ये संसार को सुखरूप भी बनाया जा सकता है और दुखरूप भी बनाया जा सकता है, ये किसके हाथ में है, अपने हाथ में है। इसको सुखरूप बनाना हो तो हम वैसा ही आचरण यदि करें तो ये सब हमारे प्रतिकूल न होता हुआ अनुकूल होता है, और अनुकूल वस्तु होती है तो सर्वत्र सुख ही दिखाई देते हैं, और अनुकूल वस्तु में से कभी दुख होने पर भी वह दुख प्रतीत होता नहीं है, और प्रतिकूल वस्तु से सुख मिलने पर भी उसको हमें सुख महसूस नहीं होता है, उससे हमें हमेशा दुख ही महसूस होता है। तो यहां आचार्य जी को सभी ने सुंदर प्रश्न किया, इस अपार संसार समुद्र में हम लोग डूब रहे हैं, निमज्जतो में डूब रहे हैं, इसका मतलब यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम हो रहे हैं। तो बताइए कृपा करके इससे पार जाने के लिए हम किसका आश्रय ले, शरणम किम अस्ति, मैंने किससे हम अपना आश्रय के रूप में ले, किसका आश्रय करें जिससे कि ये अपार संसार में हम लोग आराम के साथ पार जाए। तो संसार से पार जाने के लिए आचार्य जी बहुत सुंदर एक ही वाक्य में एक ही शब्द में उत्तर देते हैं, विश्वेश पाद अंबुज दीर्घ नौका, विश्वेश पाद अंबुज, पाद मने चरण, अंबुज मने कमल, और दीर्घ नौका, चरण कमल रूपी दीर्घ नौका है, उसका आश्रय यदि आप लोगे तो आराम के साथ पार जाओगे। और वह किसके पैर है, किसके चरण कमल है, विश्वेश, गुरु के नहीं, गुरु को तो पूछ रहे हैं, गुरु हो कृपालु, गुरु जी को विशेषण देते हैं सभी शिष्य लोग शंकराचार्य जी भगवान को, हे गुरुदेव आप तो कृपालु है, और गुरुदेव लोग कृपालु ही होते, अकारण कृपालु होते हैं, भक्त से बोले भगवान से भी गुरुदेव ज्यादा जो क्या करते हैं, अपना सहन भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, उनके ऊपर कृपा भी करते हैं, भगवान की कृपा करने की अपना नियमावली अलग है और संत लोगों की अलग है, भगवान मार के ही सुधार देते, बुद्धि देकर नहीं, भगवान किसी को सुधार नहीं तो सटे सत्यम टिट फॉर टाइट, जैसे कि टिट फॉर टाइट जैसे कि तैसे, ये भगवान का सिद्धांत है, और संतों का ऐसा नहीं, उसको मार्गदर्शन करते हुए उसके स्वभाव को ही धीरे 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 परिवर्तित करते हैं। तो यहां कृपालु भगवान से भी ज्यादा करके गुरुदेव कृपालु होते हैं, इसलिए गृह कृपालो कृपया वदीत, ऐसा बोलने पर गुरुदेव बोलते हैं उस विश्वेश की चरण कमल रूपी दीर्घ नौका में आप लोग बैठो, उसका आश्रय लो, तो ये संसार समुद्र आपके लिए कुछ भी नहीं है, आराम के साथ इससे आप पार जा सकते। विश्वेश माने विश्व का ईश्वर, ईश माने ईश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, शक्ति जिसके पास है उसका नाम है ईश्वर। हम लोगों के पास कर्तुम शक्ति भी नहीं है, कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, तो भगवान के पास तीनों शक्ति है। कर्तुम शक्ति जितने जीव है उन सब को भगवान खिलाए बिना रहते नहीं है। बोले जिसने चोच दिया है उसने दाना भी देगा, रखा हुआ है। शिवाजी ने शिवनेरी किला बना रहे थे, कई काम करने वाले कर रहे थे, उनके मन में आया वाह मेरे द्वारा कितना काम किया जा रहा है, कितने लोगों का जीवन भरण हो रहा है। और साथ में कौन थे? गुरुदेव थे। गुरुदेव मन की बात जानते हैं, वे कोई सामान्य नहीं थे। हनुमान जी के रूप में, रक्षक के रूप में हनुमान का ही अवतार है समर्थ रामदास जी का, इसलिए गांव गांव में जिसके मंदिर है, ऐसा एक भी मंदिर नहीं है, गांव नहीं है कि हनुमान जी का मंदिर न हो। जितने हनुमान जी के मंदिर है उन सबका इतिहास है कि रामदास स्वामी जी ने स्थापित करवाया हनुमान जी के मंदिर। और अब गणपति का हम लोग ये इतिहास देखते हैं तो पहले तो घरों घरों में थे ही गणपति, अपना मंडल के रूप में लेके आने वाले कौन? हा लोकमान्य तिलक ने। इनका उद्देश्य अलग था। उस समय आजादी के लिए एकत्र हो नहीं सकते थे, कुछ भी चर्चा कर नहीं सकते थे, तो चर्चा करे एकत्र आ जाए, तो एकत्र आने के लिए ये स्थापना की थी। तो गांव गांव में हनुमान जी का मंदिर महाराष्ट्र में ये प्रसिद्ध है कि इसके देन एकमात्र स्वामी रामदास जी की है। तो रामदास स्वामी जी के मन में तुरंत शिवाजी की बात अपना समझ में आ गई। शिवाजी को थोड़े से दूर ले गए, एक नहर बह रही है, वहां एक पत्थर था। शिवाजी को कह दिया, शिवबा एक पत्थर उठाओ और इस पत्थर के ऊपर मारो। तो पत्थर के ऊपर पत्थर मारने पर वहां एक छोटी सी मेंढक, छोटा सा मेंढक और थोड़ा पानी भी है और चार दाना चावल भी है। शिवाजी किसने रखा है? तो तुरंत नतमस्तक हो गए, हां मतलब मेरा अभिमान, अभिमानम सुरा पानम। भगवान होने के लिए कोई देरी लगती नहीं है, हम लोग भगवान ही है, लेकिन बीच में प्रतिबंधक है अहंकार, अभिमान बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। और संत तुकाराम जी बोलते हैं, अभिमान गेला तुका मणि देव झाला, अभिमान गेला तुका मणि देव झाला। देव होने के लिए कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये जितना अहंता ममता लेकर बैठे हुए हैं इसको पूर्ण रूप से त्याग देने के बाद में ये संसार क्या है? अहंता ममता से तो चल रहे हैं। इसका त्याग करने मात्र से ही भगवान का स्वरूप और यही भगवान के पैरों में बैठना भी होता है। अनेक प्रमाण होंगे, अभिमान न उरे कोड अवगेच पुरे, अभिमान न उरे, उरे मने शिल्लक रहना, बाकी शेष रहना, न उरे माने अभिमान बिल्कुल जिसके जीवन में रहता नहीं है उसका प्रयोजन क्या होगा। कोड अवगेच पुरी, कोड का अर्थ है मनोरथ, नहीं तो मराठी का जो आप लोग देखते हैं ना कोड़े हर एक समाचार में पत्र में रहता है एक अंक को क्या बोलते हैं पता नहीं भाई साहब शब्द को दिन रात भर जो बैठे हुए ट्रेन में देखते रहिएगा कोई ना कोई भरते रहते हैं वो उसको भी एक शब्द कोड बोलते हैं लेकिन हम वो कोड़े अलग है। इसी प्रकार हमारे मनोरथ का भी कोड अवगेची पूरे माने हमारे मनोरथ जितने हैं वो सब मनोरथ सफल होते हैं किसके कारण अभिमान नहीं रहने के कारण हो जाते हैं। तो आइए कर्तुम शक्ति भगवान के पास है तो सभी लोगों को ये भगवान अन्न भी दे रहे हैं चला भी रहे। अकर्तुम शक्ति क्या है समुद्र के ऊपर कोई पुल निर्माण होना हम लोग कर सकते हैं खाड़ी के ऊपर करना है कितना मुश्किल हो जाता है ये नई मुंबई जाते समय इतना दूर और भगवान के द्वारा कहां पर निर्माण किया गया सेतु माने समुद्र के ऊपर किया गया सेतु तो ये कौन सी शक्ति है अकर्तुम शक्ति माने हम लोग कर नहीं सकते हैं लेकिन उसको भी भगवान करते हैं इसको बोलते हैं अकर्तुम शक्ति। अन्यथा कर्तुम शक्ति भी उनके पास है अन्यथा कर्तुम शक्ति कौन आप लोग हमेशा श्रवण करते हैं या दंडक आरण्य में सीता माता को लेके आए थे और दंडक आरण्य में उस समय के ऋषि लोग रहते थे ऋषि लोग ने सुना था राम जी ने मिथिला जाते समय एक आश्रम से होकर गुजर रहे थे तो एक पत्थर को थोड़ा सा टच किया या उसकी रजी गई चरणों की रज तो शिला से अहिल्या हो गई इसको बोलते हैं अन्यथा कर्तुम। शिला थी शिला से विपरीत विजातीय जाति वाली स्त्री इसको बोलते हैं अन्यथा माने उससे भिन्न जाति वाला बनाना पदार्थ उसका नाम है